नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
कल के भरोसे पर ना
मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले, आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इन दिनों हम नए नियम की पत्री फिलिपियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने पौलुस के द्वारा लिखी इस पत्री की पृष्ठभूमि को देखा और आज हम फिर अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय एक उसके दो पद से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके पवित्र वचन में से सुनते और सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य कर सके। जिस प्रकार आपने फिलिपी की कलीसिया को आशीषित किया, हमारे भाई बहनों और माता पिताओं को भी आशीषित करें। यदि कोई बीमार है, निराश है, चिंतित है, परेशान है, तनाव में है, किसी न किसी रूप से अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहा है, पिताजी आप उन सब से बातचीत करें ताकि हर एक जीवन इस बात को समझ सके कि ये सब आपकी रचना है, आपने सबको बनाया है, आप सबसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि प्रत्येक जीवन बच जाए और आपको ग्रहण कर ले। आज के इस अध्ययन पर हम आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि पौलुस को दर्शन में एक पुरुष ने मकीदुनिया, जो स्थान का नाम है, बुलाया और पौलुस बढ़ चला और फिलिपी नगर के कलीसिया की स्थापना की। वह कलीसिया पौलुस जिससे बहुत प्रेम करता है और कलीसिया भी उसे प्रेम करती है। उन्हें जब समाचार मिला कि पौलुस रोम नगर में एक कैदी के रूप में है, जेल में है, तो उन्होंने अपने पास्टर, अपने दास और सेवक को भेंट लेकर उसके पास भेजा। प्रति उत्तर में पौलुस उन्हें प्रोत्साहन का एक पत्र लिखता है जो हम फिलिपी की पत्री के नाम से पढ़ते हैं। पिछले अध्ययन में हमने एक अध्याय का एक पद देखा, आज हम फिलिपियों की पत्री एक अध्याय उसके दो पद को देखेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री एक अध्याय उसका दो पद। लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ध्यान दीजिए, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस के प्रत्येक पत्र में यही अभिवादन है, वह अनुग्रह और शांति इसी क्रम में रखता है। ये शब्द पौलुस के युग में अभिवादन के शब्द थे। अनुग्रह यूनानी अभिवादन का शब्द था और आज भी ऐसा ही है, जैसे हम नमस्कार कहते हैं। परंतु आज अभिवादन करने वालों के मन में इसका अर्थ नहीं है, वो नियम पूरा करने के लिए नमस्कार कह देते हैं। परंतु परमेश्वर जब कहता है अनुग्रह हो, उसका अर्थ है अनंत जीवन, यही उसका अनुग्रह है। और तब हम देखते हैं शांति। शांति अनुग्रह के बाद आती है, उससे पहले कभी नहीं। शांति शब्द इब्रानी भाषा के शालोम से निकला है। यरूशलेम का अर्थ है शांति का नगर, परंतु वह नगर सदैव ही युद्धों का नगर रहा है। आज भी यरूशलेम संसार की आंख का कांटा है। यरूशलेम या संसार में कभी शांति नहीं हो सकती जब तक कि शांति का राजकुमार ना आए। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु है। तथापि विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह से शांति प्राप्त होती है। रोमियों की पत्री अध्याय 5 उसके 1 पद में पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यह मेल ही विश्वासी की शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा और हमारा दंड चुकाया, और अब परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार करता है। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काम करता है और उसका वेतन अर्थात मजदूरी पाता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक मनुष्य जो पाप करता है, हर एक को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, और मजदूरी है मृत्यु। परंतु हमारे प्रभु यीशु ने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और हमें उस मृत्यु से बचा लिया। हम अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। सच तो यह है कि हमारे पास है ही क्या कि हम परमेश्वर को कुछ दें। हमारे पास तो केवल पाप है। प्रभु यीशु ने उन पापों का दंड चुकाया कि परमेश्वर हमें ग्रहण कर ले, और वह आपको ग्रहण करता है। यह कितनी खुशी की बात है। इस उपद्रवी तनावपूर्ण संसार में, परीक्षा के संसार में, जिसमें जो बुराइयों से भरा है, प्रतिदिन हत्याएं, चोरी, व्यभिचार और घमंड की बातें हम सुनते हैं, हम उसमें परमेश्वर के शांति का अनुभव अपने मन में पाते हैं। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तब, मेरे मित्रों, यह शांति परमेश्वर की है, जो वह उन्हीं लोगों को देता है जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और अपना उद्धार करता माना है। अतः हमें परमेश्वर की शांति पाने से पूर्व उसके अनुग्रह का अनुभव करना है। यह अनुग्रह और शांति हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती रहती है। अब मैं एक आध्यात्मिक प्रश्न पूछता हूँ, क्या पौलुस त्रिएक परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है? यदि वह त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा को क्यों नहीं सम्मिलित करता है? इसका कारण है कि फिलिपियों की कलीसिया में पवित्र आत्मा पहले से ही था। वह उन विश्वासियों में अंतर्वास करता था। पौलुस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास करता था, और यहाँ वह अति स्पष्ट है। फिलिपी के विश्वासियों के लिए पौलुस की उदार भावनाएं हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, वह अपने पत्र का मुख्य भाग अति सहद्रता से आरंभ करता है। इससे पौलुस और फिलिपी की कलीसिया के मधुर संबंध प्रकट होते हैं। आज विश्वासियों में ऐसे ही संबंध होना चाहिए, विशेष करके पास्टर और कलीसिया के बीच में। जब भी वह किसी के मुंह से फिलिपी नाम सुने तो वह परमेश्वर को विश्वासियों के लिए धन्यवाद कहेगा। यह एक अति महान बात है कि कलीसिया पौलुस से प्रेम करती है और पौलुस कलीसिया से प्रेम करता है। आज हम सब के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है कि हम कलीसिया में होकर परमेश्वर के दासों के साथ प्रेम करें, ताकि हमारी कलीसिया बढ़ने पाए। मुझे किसी ने किसी संस्था से पत्र लिखा, वे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। यह उचित ही है, परंतु जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि उनके पत्र के आरंभ में वे लिखते हैं, मैं आपको स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं जानता कि वे वास्तव में ऐसा करते हैं या नहीं, परंतु वे मुझे निवेदन के लिए तैयार करते हैं। ऐसी कलीसिया की सेवा करना कैसे सौभाग्य की बात है, और ऐसा व्यक्ति होना भी एक महान बात है जिसके विषय में ऐसा कहा जाए, जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर को स्मरण करता हूँ। यदि पौलुस उस कलीसिया के लिए और कुछ न कहे तो उसकी प्रशंसा में इतना ही बहुत है। पौलुस के अन्य पत्रों को आप पढ़ेंगे तो उसने किसी भी कलीसिया के लिए ऐसा नहीं लिखा था, न तो गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को और न ही कुरुंथ की नगर की कलीसिया को। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। अब और एक नई बात ध्यान दीजिए, सदा कभी कभी नहीं, पौलुस सदैव उन्हें प्रार्थना में याद करता है और कहता है तुम सब, अर्थात पौलुस फिलिपी की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को प्रार्थना में स्मरण रखता है। इस पत्र के अंत में हम देखेंगे कि उनकी कलीसिया में 2 महिलाओं में थोड़ा मन मुटाव था, युओदिया और सुंतुखे। पौलुस ने अपने पत्री में संपूर्ण कलीसिया को स्मरण किया कि कोई यह न कहे कि पौलुस ने हमें लिखा है, या कोई कहे कि तुम्हें लिखा है और मुझे नहीं लिखा। आज ऐसा कई बार होता है कि कलीसिया के बड़े लोग चाहते हैं कि उनका भी नाम कलीसिया के पत्र में लिया जाए। आनंद के साथ विनती करता हूँ। प्रभु के दास बेंगल के अनुसार पौलुस के कहने का अर्थ था, मैं आनंद करता हूँ, तुम भी आनंद करो। पौलुस की बंदी अवस्था पर ध्यान दीजिए तो हमें पता चलेगा कि उसका यह कहना कितना अद्भुत है। आप सोच लीजिए कि आप बंदी गृह में हैं और आप कहते हैं कि तुम आनंदित रहो और मैं भी आनंदित रहूं। क्या यह संभव है? वह रोम में कारावास में था और यूस के कारावास 5 सितारे होटल की तरह सुविधा के नहीं थे, वे काल कोठरी होते थे। यद्यपि आनंद इस पत्र में 19 बार आया है, परंतु मेरे विचार में इस पत्र को आनंद का पत्र नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा शब्द खोजे जो सबसे अधिकतम या अधिक काम में लिया गया है तो हमें प्रभु यीशु का नाम लेना होगा, क्योंकि वह शब्द 40 बार से अधिक इस पत्र में आया है। वह इस पत्र का केंद्र भाग है, वही तो है जो आनंद का स्रोत है। अतः हमें आनंद की अपेक्षा प्रभु यीशु पर ध्यान देना चाहिए। जैसा हम देखेंगे, मसीही जीवन का आधार प्रभु यीशु से संबंधित है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन शैली उससे संबंधित है, मसीही जीवन का मोल उससे संबंधित है, मसीही जीवन का सामर्थ्य ही वह है। और सच तो यह है कि विश्वासी के जीवन का आनंद प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत जीवन है। हम कलीसिया के या कलीसिया में बाहरी साधनों से आनंद लाना चाहते हैं। हम कार्यक्रमों का आयोजन करके सबको आमंत्रित करते हैं, आओ और आनंद लो। हम भोज का आयोजन करते हैं और कहते हैं आनंद आया। सच तो यह है कि आनंद बाहरी बातों पर निर्भर नहीं करता। सच्चा आनंद मनुष्य की आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है, जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप अपने जीवन के प्रति शिकायत और कुड़कुड़ाना रखते हैं तो आपको निश्चय ही आनंद प्राप्त नहीं होगा। आप कलीसिया के भोज में उपस्थित हो सकते हैं और आपका कुछ मनोरंजन हो जाएगा, परंतु वह सच्चा आनंद नहीं है। परंतु यदि हम परमेश्वर की इच्छा में हों, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वह सच्चा आनंद बना रहेगा। आज लोग बाहर से शांति और आनंद को पाना चाहते हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग सिनेमा घरों में, मनोरंजन के स्थान में, शराब के खाने में जाते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। यह असंभव है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जी हाँ, मनुष्य का शांति थोड़े समय के लिए होता है, आनंद थोड़े समय के लिए होता है, परंतु परमेश्वर जो हमें आनंद और शांति देता है ये हमेशा के लिए है। इसीलिए वह कहता है कि मैं संसार के जैसे तुम्हें नहीं देता। मेरे प्रिय मित्र, क्या आज आप उस संसार की शांति की तलाश में हैं, उस आनंद की खोज में हैं, या आप उस अनंत आनंद को पाना चाहते हैं? पौलुस उन्हें लिखता है, जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। पौलुस के लिए प्रार्थना का समय यातना का समय नहीं था। उसने यह नहीं लिखा, मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना का कष्ट उठाना पड़ता है। जी नहीं, उसने कहा, मैं बंदी गृह में हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बड़े आनंद की बात है। मेरे फिलिपी के भाइयों, मैं बहुत आनंदित हूं। जी हाँ, ऐसा करने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। अब उन्हें यह बताकर कि वह उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वह उसका कारण भी बताता है। तो आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 1:5 में। वह लिखता है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी। अब हम इस पत्र के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द को देख रहे हैं और हमें इसे अनदेखा नहीं करना है। यह शब्द कलिसिया में वरन बाहर भी बहुतायत से काम में लिया जाता है। मेरे विचार में अधिकांश लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग भी करते हैं। वर्षों पूर्व मुझे एक स्थान में वचन सुनाने के लिए बुलाया जाता था। जब वहां के बड़े अध्यक्ष ईस्टर के पर्व में मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए आमंत्रित करते थे, तो वह एक मसीही डॉक्टर थे। वक्ता के आसन पर लिखा होता था, भोजन, मनोरंजन, सहभागिता। ये तीन बातें आरंभिक कलिसिया की थी, और मेरे विचार में इस स्थान को ऐसी गर्वोक्ति नहीं करना चाहिए था जैसा वे करते हैं। भोजन के लिए तो उनके पास मुर्गी और सख्त मटर होते थे, और मनोरंजन के लिए अशिष्ट चुटकुले। उनकी सहभागिता थी किसी की पीठ पर हाथ रखकर कहना, हेलो दोस्त, व्यापार कैसा चल रहा है, आप कैसे हो? मेरे प्रियो, बाइबल के अर्थ में यह सहभागिता बिल्कुल भी नहीं थी। बाइबल में सहभागिता का अर्थ है विश्वासियों द्वारा मसीह की बातों को एक दूसरे के साथ बांटना। सहभागिता में तीन बातें होती हैं। ध्यान दीजिए, पहला, मसीह के संबंध में महान सत्यों को बांटना। दूसरा, मसीह के लिए सहकर्मी होना। यही कारण है कि पौलुस का अभिप्राय सहभागिता से यही था कि बाइबल पढ़ना, बाइबल अध्ययन करना, या साथ में प्रार्थना करना, या प्रभु भोज खाना और भेंट उठाना। पौलुस इन बातों को सहभागिता कहता है, जिसका परिणाम होगा मधुर सहभागिता, मसीह के संगी होना। यह सच्ची सहभागिता है, और पौलुस कहता है कि वह कलिसिया उसकी सहभागी थी। उसने उन्हें सुसमाचार सुनाया था, उन्होंने सहानुभूति से पूर्ण पौलुस को भेंट भेजी और उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सदा ही की थी। अब जब वे एक साथ थे तब उनमें मधुर संगति थी। पहले दिन से लेकर आज तक पौलुस ने पहले ही दिन से उनकी अति उत्तम संगति का आनंद उठाया था। उस दिन उसकी भेंट लुदिया और उसके साथियों से नदी अर्थात झील के किनारे हुई थी, जब वे वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। और इसीलिए पौलुस कहता है कि पहले दिन से लेकर अब तक, यानी कि आज तक वह आनंदित है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि कलिसिया में जिस व्यक्ति के साथ आप भेंट करते हैं, पहले दिन से लेकर के आज तक आपका आनंद उसी प्रकार का है, या आपके आनंद में परिवर्तन आ गया है जब आपकी मुलाकात मसीह से और उसके लोगों से हुई थी। क्या आज आपकी कलीसिया में आनंद है? क्या आपकी कलीसिया में सहभागिता है? परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक के जीवन में वो आनंद उमड़ जाए। यह सब कुछ संभव है जब हम प्रभु यीशु के निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जी हाँ, तब हम सही सहभागिता को पहचाने पाएंगे और हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, और हमारे कलीसिया में और हमारे परिवार में और हमारे बच्चों में परमेश्वर की आशीषें अवश्य प्राप्त होगी। तब हम भी कहने पाएंगे कि मैं आनंदित हूँ, मैं सहभागिता रखता हूँ। मेरे मित्रों, आइए आज हम सब इस अध्ययन के वचन के अनुसार अपने जीवन को डालें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी इस प्रकार की सहभागिता चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं भी अपने जीवन में आपको नजदीकी से देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस फिलिपी कलीसिया के लिए, जिसमें प्रभु आपने अपने भक्तों को तैयार किया और अपने दास पौलुस को इस सेवकाई के लिए प्रयोग में लिया। आज जब हमने इस पत्री से अध्ययन किया है, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे व्यक्तिगत जीवनों को आप स्पर्श करें, हमसे बोले और बातचीत करें, हमारी कलीसियाओं में सहभागिता, प्रेम और आनंद बढ़ने पाए। और हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जिस प्रकार फिलिपी की कलीसिया आरंभ से ही सुसमाचार प्रचार के कार्य में हाथ बटाती थी, ऐसे ही हम सब भी कलीसिया के साथ एकजुट होकर आपके कार्यों में हाथ बटाने पाए। आप प्रत्येक से बोले और बातचीत करें, हम सब की सहायता करें ताकि एक एक जीवन आप में आनंदित होने पाए। इस समय फिर से बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आज के वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि अगले अध्ययन में भी आप अवश्य ही परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो।